भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
धर्मासनुष्ठिता पुंसाम्
धर्मासनुष्ठिता पुंसाम्
निष्पक्षेण कृताश्रुयः
निष्पक्षेण कृताश्रुयः
तत्पदय यदि रतिम्
तत्पदय यदि रतिम्
श्याम एव हि केवलम्
श्याम एव हि केवलम्
Duty is dharma executed by men, regardless of occupation, are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the Supreme Lord.
Dharmasthanasthita pumisa visrakshena kathasuja nutpadaya yadiratim srmaye vayake. Dharma ka artha hota hai jo apna apna kartavya. पहले भी आप लोगों को सुनाया था. धर्म का अर्थ तो ये नहीं है जो कोई हम एक प्रकार चीज को मान लिया वो हमारा धर्म है. जैसा हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, हम मान लिया बस काम खत्म हो गया. नहीं, धर्म का अर्थ होता है जो इंग्लिश में जैसे दिया गया है कर्तव्य, करना ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकेंगे. जैसा नौकर है तो मालिक का हुक्म सुनना ही पड़ेगा, उसका कर्तव्य है, नहीं तो नौकरी नहीं टिकेगा. इसी प्रकार जीव का जो धर्म है, चैतन्य महापुरुष बताए और भगवान श्री कृष्ण भी बताए, ममैवांश जीव भूत. जीवात्मा जो है वो हमारा अंश स्वरूप है. और अंश स्वरूप कैसा हुआ, अंशर अंशी. जैसा हमारा शरीर है, आपका शरीर है, और शरीर का अलग अलग विभाग है, लिंग्स, पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जैसा हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, अलग अलग विभाग. और वो विभाग का काम क्या है, आंख, आंख का कर्तव्य है देखना, कान का कर्तव्य है सुनना. आंख अगर नहीं देखता है तो उसको अंधा बोला जाता है, यानी नॉट इन नॉर्मल कंडीशन, स्वाभाविक अवस्था नहीं है. आंख का काम ही है देखना. आंख अगर नहीं देख सकता है वो स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक बीमारी. तो देख करके शरीर को सेवा कर, आंख का काम है देख करके हम चलने चाहता है शरीर, आंख देखता है इधर से चलिए, वायर चलता है, अलग अलग शरीर का जो भाग है अलग अलग कर्तव्य है. इसका नाम है धर्म. मेरा आंख का धर्म है देखना, पैर का धर्म है चलना. इसी प्रकार जीवात्मा भगवान कहते हैं कि ममैवांश जीव भूत. जीवात्मा जितने हैं हम लोग, भगवान कहते हैं हमारा अंश है. तो जैसा शरीर का अंश, हाथ पैर आंख, अलग अलग सब सेवा कर रहे हैं, सेवा में निजुक्त है, इसी प्रकार जीवात्मा का कर्तव्य है भगवान की सेवा में निजुक्त रहना. ये कर्तव्य, ये अंश है ना. भगवान जैसे चाहते हैं एक एक देवता से एक एक काम लेता है, इसी प्रकार एक एक जीव से एक एक काम लेता है. तो उसका नाम है भक्ति. आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा. भक्ति का अर्थ होता है कि एक एक जीव का एक एक कर्तव्य है भगवान का तरफ. भगवान जो चाहते हैं तुम ये काम करो वो सेवा है. जैसे अर्जुन को भगवान बताया तुम लड़ाई करो, तो लड़ाई करना है उनका कर्तव्य. उसका नाम है भक्ति। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से, प्रतिकूल भाव नहीं, जो कृष्ण बताए उसको करो। भगवान ये चाहते भी हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, मैं जो बोलता हूं उसको सुनो, हमारा चरण में शरणागत हो, इसका नाम है धर्म। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, और सब धर्म का नाम जैसा चल रहा है वो सब जुआचे, असल धर्म ही है यह आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, यह असल धर्म, जैसा भगवान बताते हैं ऐसा करो। भगवान बताते हैं मन मना भव मत भक्तो मत जाजी मांग नमस्कुरु, वो तुम्हारा धर्म है, हमारा धर्म है। भगवान खुद बता रहे हैं कि सब समय हमारा चिंतन करो, मन मना भव मत भक्तो, हमारा भक्त बन जाओ, हमको नमस्कार करो, हमको पूजा करो, ये भगवान बताते हैं। वो करना है हमारा धर्म है, और जो काम हमारा है वो सब अधर्म है। इसलिए भागवत में कहते हैं धर्म प्रोज्जित कोई तब अत्र, जो यदि चीटिंग छलबाजी धर्म है, यानी भगवत सेवा छोड़ करके जो कुछ धर्म का नाम में चल रहा है ये सब कोई तो चीटिंग है, असल धर्म ही है। तो हम लोग अपना अपना सब धर्म बना लिया है, तो इसलिए बता रहे हैं कि धर्मस्य अनुष्ठित पुंसा, अपना अपना से ड्यूटी हम लोग सोच लिया, ये हमारा ड्यूटी, अच्छा अपना ड्यूटी करो, परंतु आखिरी में यदि अपना ड्यूटी जो है उसको करके भगवत भक्ति हुआ तो तुम्हारा ड्यूटी ठीक हुआ, और नहीं हुआ तो समय वही केवलम, केवल परिश्रम हुआ और कुछ नहीं, लाभ हुआ परिश्रम, लाभ ना होइल इथे घोटिल जोन जा ना तुम नाश्ता को होता है। ये जो हम धर्म बना लिया है शरीर का, इसमें हमारा कुछ लाभ नहीं हुआ, केवल जंजाल हुआ, बस यही बात है। हम लोग जो तात्कालिक धर्म में फंसे हुए हैं और भगवान को भूल गया है, इसमें हमारा लाभ यही है, वही फंसे ही रहेंगे और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। एक जन्म का बाद और एक जन्म और एक जन्म, वही वही काम में फंसा रहा, शरीर का धर्म। इसलिए कहते हैं जो आप पूछना चाहिए धर्म क्या चीज है, धर्म का अर्थ होता है क्लियर स्पष्ट, भगवान बता रहे हैं यही धर्म है कि माम एकम एकम, ये नहीं है जैसा मायावादी लोग कह रहे हैं कि कोई कोई भगवान का रूप जाजन करो फल एक ही होगा, नहीं भगवान ये बात नहीं बोलते, भगवान का रूप सभी है, आप भी भगवान का रूप है, हम भी भगवान का रूप है, परंतु भगवान का एक खास रूप है, वो रूप को भजन करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं माम मुझे एकम, एक कृष्ण रूप, कृष्ण कृष्ण का अर्थ होता है विष्णु तत्व, रामादिमूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन नाना अवतार मकरत भुवनेशु किंतु कृष्ण स्वयं समभव परम अपमान, जो कृष्ण जो है स्वयं परम पुरुष है, ये ब्रह्म संहिता में है, और भी बताया है कि गोविंदवादि पुरुषम तमाम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधि गोविंद सर्व कारण कारण, सब कारण के कारण मूल कारण है कृष्ण, अहम आदि ही देवाना, भगवद गीता में भगवान खुद बताए मत परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, उससे बढ़कर के और कोई पर सकता है, तो भगवान खुद बता रहे हैं हमको लेना चाहिए, उनको समझना चाहिए। और एक दफे हम भगवान कृष्ण को समझ लिया, भगवान कृष्ण को समझना कोई सरल बात नहीं है, बहुत मुश्किल है, परंतु यदि साधु सत्संग द्वारा भगवान का विषय कुछ हम लोग समझ गया तो हमारे जीवन सफल हो, और नहीं तो समय वही केवल केवल परिश्रम। खूब गंगा स्नान किया, खूब तिलक लगाया, खूब तीर्थ स्थान में भ्रमण किया और पूजा पाठ जार यज्ञ सब कुछ किया, बाकी भगवान को नहीं समझा, तो ये सब परिश्रम, इसमें कोई लाभ लाभ है यदि भगवान कृष्ण को कोई समझ सके, इसमें ही लाभ आराधित यदि हरि तब का तथा किम, यदि भगवान कृष्ण को कोई समझ गया फिर उसका तपस्या का क्या जरूरत, काम बन गया। नाराधित यदि हरि तब सा तथा किम, और खूब तपस्या किया, खूब जाग जज्ञादि किया, बाकी भगवान कृष्ण को नहीं समझा, तो तुम्हारा तपस्या के क्या फल है। अंतर वही यदि हरि तब सा तथा किम, यदि ये बात तुम सीख गया जो अंतर में बाहर में सब समय केवल कृष्ण का दर्शन होता है, तो फिर तो समझा लें जन्म सार्थक करी, जन्म सार्थक करने को उनको मौका है। भारत भूमि में घर घर में गीता है, भागवत है, बाकी कोई पढ़ता नहीं, कोई जानता नहीं, कोई सुनता, इतना गधा हो गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु विशेष करके कहते हैं कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है, जन्म सार्थक करी, जन्म सार्थक करी का अर्थ होता है जन्म को पूर्ण बनाओ, संपूर्ण बनाओ। तो संपूर्ण बनाने का तरीका क्या है, ये वेदादि शास्त्र पढ़ो अच्छी तरह से समझो, तभी तो जीवन सफल होगा। जासूसी लिटरेचर पढ़ के क्या लाभ होगा, नहीं उसी में आ सकती है, उसी में आ सकती है। कद वायस तीर्थम भागवत में बताया, न तद बचस चित्त पदम हरेर जस प्रगिनीत कर ही चीत तद बायसम तीर्थम। जिस शास्त्र में भगवान की गुणगान लिखा नहीं है वो जो शास्त्र है, साहित्य है, वो बायस तीर्थम कौए का आनंद का स्थान है। कौए कौए जितना झूठा चीज खराब चीज फेंक देता रस्ता में, उसी में कौआ लोग आके आनंद लेते तदबाय संति। और जिस शास्त्र में भगवान का गुणगान लिखा है वो हंस का लिया है, परमहंस हंस हंस राजहंस, वो स्वच्छ जल में रहता है जहां पद्मफूल और बड़ा वातावरण बड़ा सुंदर, वहां जाके वो हंस लोग रहता है, और कौएल होता है जहां सब खराब चीज फेंक दिया जाता है उधर कौएल। ये पक्षी में ये विभेद है, कोई हंस है कोई कौए। इसी प्रकार ये जो शास्त्रादि है वेदादि शास्त्र में जो ध्यान नहीं देते हैं और इधर उधर का न्यूज़पेपर जासूसी सब खबर पढ़ते हैं वो सब कौए। राजहंस जो होगा ये सब शास्त्र का अनुशीलन कर, परमहंस राज ये उचित, ये भारतवर्ष में बहुत जल्दी ये काम हो सकता है। भारतवर्ष में अभी तक पंडित है और भक्त भी है जो कि शास्त्र को समझता है समझा सकता है, उसको पास जाए शास्त्र का अभिलाष समझे और जीवन को सार्थक करे, करके खाली बैठ नहीं रहे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जन्म सार्थक करे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो अपना जीवन सार्थक कर लो, फिर परोपकार करो, दुनिया को सुनाओ। दुनिया में काम तो देख रहे हैं सारा दुनिया में, केवल आहार निद्रा भय मैं तो नहीं जानते, तुमको सुनाना चाहिए। ये भारतवर्ष का काम है जो पृथ्वी का है कि कोना कोना में सब चले जाए, बड़े बड़े विद्वान साधु भक्त लोग जाके इनको सुना है, ये सुनता है, ये सुनने लेकिन बहुत आग्रह इनका है, तभी तो आया है। ये इधर आपका स्विंग मशीन देखने को नहीं आया, जब इंडस्ट्री स्विंग मशीन बनाया साइकिल बनाया वो तो 200 बरस पहले ये लोग बनाया, वो रास्ता में जाने से अब कभी कोई माननीय व्यक्ति नहीं होंगे। जहां इंडस्ट्री में बड़ा हो गया, तुम क्या इंडस्ट्री करो, वो 100 वर्ष आगे है, उसको अगर भगवत भक्ति दोगे तभी तुम्हारा सम्मान बनेगा। वो चीज वहां है नहीं, मशीन बना के उधर बड़ा नहीं हो सकते, इधर बना सकते हो बोनगाए सियाल राजा, जंगल में सियाल भी वो सिगाल भी राजा हो जाता, वो अलग चीज है। यदि भारतवर्ष का सम्मान चाहते हैं तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो मिशनरी है, जो भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जा जन्म सार्थक करी करो परो उपकार, ये भारत का मिशन होना चाहिए। उधर से नकल करके और स्काई स्क्रबर बिल्डिंग बना करके इसमें आप उससे बड़ा नहीं हो सके, वो और आगे बहुत। इसीलिए ये कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट है, जब असल में भारत जो असली कृष्टि है, सभ्यता है, भगवत भक्ति और भगवत गीता मौजूद है, कोई मुश्किल नहीं है। भगवत गीता में सब बात अच्छी तरह से लिख दिया गया है, उनको अच्छी तरह से समझाओ, खुद भी समझो, अपना जीवन का सार्थक करो और परो उपकार, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं। और चैतन्य महापुरुष बता रहे हैं कि आप लोग सब गुरु बन जाए, गुरु का बहुत जरूरत है, क्या सारा दुनिया सब मूर्ख है, गधा है, उसको सिखाने के लिए बहुत गुरु का जरूरत है। भाई वो गुरु नहीं है जो अनशन बात बता करके उधर के मांस खाने के लिए सीख आया परिदर्शन सन्यासी, वो गुरु नहीं। गुरु तो जैसा शास्त्र में बताया है, जैसे चैतन्य महापुरुष बताते हैं कि आमार आज्ञाएं गुरु होगी, मैं जो बता रहा हूं उस आज्ञा को पालन करके गुरु, ऐसा भूमि फोर गुरु में आज्ञा पालनकारी गुरु, जो कि सुपीरियर ऑथोरिटी का ऑर्डर मानते हैं वो गुरु है, और अपना कुछ मैन्युफैक्चर करके गुरु नहीं हो सकता, वो गुरु नहीं। समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम साधे परेच निष्णातम ब्रह्मनी भुषमाशय, ये गुरु का लक्षण है। तद्विद्धि प्रणिपातेना परिप्रश्नेना सेवया उपदक्षंति तद ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शी, जो तत्वदर्शी है वो गुरु है, जो तत्व को देखा है, ऐसा भूमि फोर्म। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण भगवान और कृष्ण भी बोलते हैं वही एक ही बात, जयदम परमम गुह्यम मद भक्ता मद भक्ति सो विदास न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृष्ण। तो पूर्व पूर्व आचार्य का ये भगवान का जो बातें हैं उसको यदि प्रचार करे तभी वो गुरु है, नहीं तो ऐसे गुरु नहीं हो सकते। तो चैतन्य महापुरुष कहते हैं इसीलिए जे आमार आज्ञाएं गुरु है या तारो है, हमारी आज्ञा से मैं जो बोल रहा हूं, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, वही जो भगवान बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण बोलते हैं मां एक अंग शरण अंग भजन, और चैतन्य महाप्रभु बोल कह रहे हैं जो कृष्ण का भजन करो, हरे कृष्ण का नाम जाप करो, ये कृष्ण का भजन, कोई फर्क नहीं। और चैतन्य चैतामृता और खास करके बताते हैं हमार आज्ञाए गुरु हैया तारो यही देश, जारे कहो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये परंपरा थी। चैतन्य महाप्रभु कोई नई बात नहीं बोल रहे, वो कहते हैं कि कृष्ण का जो उपदेश है उसको बताओ सबको, जारे देखो तारे कहो, कहीं भी किसी को देखो ये कोई मुश्किल है क्या। यदि प्रत्येक व्यक्ति ये कहने को शुरू करे तो देखो जी भगवत गीता में भगवान चाहते हैं कि सब कोई उनका चरण में शरणागत हो जाए, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं कि आप भी हो जाइए, बस आप गुरु हो गए, कोई मुश्किल है क्या? कृष्णा बदे जो कृष्ण बोल रहा है उसी को बोलिए, आपको कोई मैन्युफैक्चर करने नहीं पड़ेगा। जो कृष्ण बोल रहा है जारे देखो तारे कहो कृष्ण, तो सबको लिए उचित है। जैसा चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जैसा कृष्ण बताते हैं, इसी प्रकार कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट को पूरी दुनिया में प्रचार करना चाहिए। और नहीं तो जो कुछ हम लोग कर रहे हैं वो केवल परिश्रम है, उसमें कुछ लाभ तो धर्म सानुष्ठित पुंसान विश्वास न कर। रुचि अपना रुचि बढ़ाइए और दूसरे को रुचि संपन्न कराइए। हाँ, ये शास्त्र का निर्देश है। सबको मिल करके सबको समझा कि भाई कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कृष्णा जो असल भगवान है वो कृष्ण है, कृष्णास्तु भगवान स्वयं। वो चाहते हैं जो उनका चरण में आप लोग सब शरणागत हो जाइए और मैं भी उनका वृत्त और उनका जो संवाद है उसको वहन करके पियन का ऐसे आपको बसा करके दंते निधाय तिनकं, ये बड़े बड़े साधु लोग यही कहते हैं, दंते निधाय तिनकं पदयो निपत्य। हाँ, हम अपना मुंह में तिनक ग्रहण करके बहुत नम्रता से और बहुत खुशामदी करके आपको चरण में एक निवेदन कर रहा हूं। ये प्रचार जो विषय तो जो भद्र व्यक्ति होगा वो सुनेगा, अच्छा भाई बोलो तुम इतना दीनता से नम्रता से कुछ चीज बोलने को चाहते हो तो बोलो, क्या बोलने को चाहते हो? तो बोलना है कि हे साधव, आप तो बहुत साधु है, आप बहुत जानने वाला है, सुनने वाला है, ये हमारा निवेदन है। सकलों में वह विहाय दुरा, जो कुछ आप सीखे हुए हैं उसको फेंक दीजिए, उसको दूर में फेंक दीजिए। सकलों में वह विहाय अधूरा, फिर हमको क्या करना है? चैतन्य चंद चरणे कृतानुराग, जो चैतन्य महाप्रभु जैसे बताते हैं उसका आप करें। ये प्रचार का काम है। प्रचार कली काल में ये झगड़े का अड्डा है, ऐसा ज्यादा जबरदस्ती बोलने से बिगड़ जाए। उसको बहुत खुशामदी करके जो आपको पैर में गिर करके और खुशामदी करके और दंत में तीर्ण ग्रहण करके एक निवेदन कर रहा हूं, जो आप बड़े साधु है, बहुत सीखे हुए हैं, कृपा करके सब कुछ भूल जाइए, केवल चैतन्य महाप्रभु जैसे बता है ऐसे सुनिए। क्या बताया ना, ओए जारे देखो तारे कहो कृष्ण, जिससे आपसे मुलाकात हो, बाजार में हो, घर में है, हाट में हो, और रेल में हो, एरोप्लेन में है, देखो जी ये भगवत गीता की वाणी है, सर्वधर्म मान पुरुष, तो आप ये काम कीजिए। हरे कृष्ण बोल, बस अब गुरु बन धर्म स्थान चित पुंसान विश्वक्ष न प्रकाश। और एक धर्म का विषय बोलना है। धर्म का अर्थ होता है ड्यूटीज। तो ड्यूटीज एक एक व्यक्ति का एक एक ड्यूटी होता है, जैसा पहले आप लोग को सुना है। तो वास्तविक मनुष्य समाज में चार विभाजन होना चाहिए, चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभाग, ये होना ही चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण कौन है? जिसका दिमाग बहुत अच्छा है और प्रैक्टिस किया है, तपस्या किया है, सत्व सम दम तिथि खा आर्जव ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव, ये सिखाना चाहिए। एक क्लास ऑफ मैन देर मस्ट बी ब्राह्मण, नहीं तो सोसाइटी को कौन गाइड करे? सब शूद्र हो गया तो कौन गाइड करे? कलयुग में तो यही मुश्किल है, कलौ शूद्र संभव, कोई ब्राह्मण नहीं, कौन सिखाएगा? ब्रेन नहीं है, शूद्र है पैर और ब्राह्मण है हेड और क्षत्रिय है बाहु और वैश्य है पेट। जैसा शरीर में चार विभाजन है, इसी प्रकार समाज का चार विभाजन होना चाहिए और सबसे परस्पर कोऑपरेशन सहयोग होना चाहिए, तो परफेक्ट सोसाइटी। जैसा आपका हमारा ब्रेन है, पैर है, हाथ है, पेट है, ये अगर सहयोग करे तो शरीर सुस्त रहता है, सब काम ठीक ठीक चलता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब आजकल का विचार है सब उड़ा दो, केवल शूद्र ही रहो, उसमें कुछ लाभ नहीं। ये शूद्र लोग जो गवर्नमेंट में चला गया है तो ये क्या गवर्नमेंट चला गया, शूद्र क्या जाए, तो क्षत्रिय चाहिए। इसलिए दुर्दशा ये जो चार विभाजन है धर्म, इसका नाम है वर्णाश्रम धर्म। हम लोग अभी नाम दिया है हिंदू, हिंदू नहीं, हिंदू को मुसलमान का दिया नाम है, असल में शास्त्रीय नाम है वर्णाश्रम धर्म, हिंदू धर्म नहीं, वर्णाश्रम, चार वर्ण चार आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, ये आठ चीज अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भाव से चलना चाहिए। तो कलयुग में ये भी असंभव हो गया और ठीक ठीक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मिलता नहीं, इसलिए कलयुग में भगवान शास्त्र में एक ही निर्देश दिया है कि तुम चाहे ब्राह्मण हो शूद्र हो और क्षत्रिय हो जो कुछ हो, असल में तुम्हारा काम है भगवान को संतुष्ट करना, ये असल काम है। वर्णाश्रम विभाग ये नैमिषारण्य में बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित और ऋषि लोग को विचार में ये स्थिर हुआ है। अतः पुंग भी दिज श्रेष्ठ, ये सुध गोस्वामी बताया तो देखो जी आप लोग तो सब दिज श्रेष्ठ है, बड़े बड़े ब्राह्मण सब इधर उपस्थित है, तो शास्त्र का अनुसार ये निर्दिष्ट है। अतपुंग भी दिज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग, कोई वर्णाश्रम को बात किया ये चार वर्ण और चार आश्रम, तो वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्मस्य संसिद्धि हरितोषण, वही बात इधर भी है, जो चाहे ब्राह्मण है ये चाहे ब्रह्मचारी है ये चाहे शूद्र है ये चाहे गृहस्थ है ये जो कोई असल आपका काम है संसिद्धि, यदि आप सिद्धि प्राप्त करने को चाहते हैं संग सिद्धि हरितोषण भगवान को संतोष करने, तो कलयुग में ये जो विभाजन है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ स्थित की होना बहुत मुश्किल है, इसलिए एक काम सबके लिए उचित है कि हरितोषण हम भगवान को संतुष्ट, तब आपको सिद्धि होगी संग सिद्धि हरितोषण। तो भगवान कलयुग में बड़ा सरल भाव से संतुष्ट हो सके, क्यों किस तरह से हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्तेव गतिरंजन, इसलिए शास्त्र का निर्देश अनुसार हम लोग तो बहुत गिरे हुए हैं, इसलिए हरेर नाम भगवान का नाम, ये नहीं है कोई नाम लिया नहीं, हरेर नाम इसलिए खास करके बताया हरेर नाम, तो भगवान का अनंत कोटि नाम है, राम नृसिंह बराह आदि अनेक हजार हजार नाम है, कोई नाम भी ग्रहण कीजिए। अभी हम तेहरान से आ रहे हैं, उधर मुसलमान का देश है, तो कोई कोई ऐसा समझा जो हम लोग आपका कृष्ण का नाम क्यों ले, नहीं हम बोलता है जो कृष्ण का नाम नहीं भगवान का नाम अनेक है, आप क्या भगवान का नाम समझते हैं, वो बोलता हम लोग बोलता है अकबर है अल्लाह, अल्लाह का नाम लीजिए, बाकी भगवान का ही नाम लीजिए और कुछ नाम, नाम नामकारी बहुला निज सत्व शक्ति, तो भगवान का नाम शास्त्र में जैसा है उसको ग्रहण कीजिए, ग्रहण करके अपना जीवन को सफल कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। और यदि हम लोग भगवान का नाम नहीं लिया भगवान को समझा नहीं, धर्म स्थान विश्वक्ष न कथा भगवान को अपनाया नहीं, तो फिर जीवन केवल विफल हुआ, समय वही केवल, ये शास्त्र का निर्देश है। तो कलयुग में ये बड़ा सरल है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये कीर्तनीय सदा हरि सततं कीर्तयन्तं मां जतन्तश्च धीरभृतं, भगवद्गीता में सब समय हमारा नाम कीर्तन करते हैं, सततम सततम माने 24 घंटे, उठते बैठते सोते खाते पीते सब समय हरे कृष्ण सततम कीर्तन तम माम जतंतश्च दिरभ्रत नमः संतश्च मांग नित्यं नित्य युक्ता पासती, ये सब शास्त्र का निर्देश है। तो शास्त्र विधि ग्रहण करने से सिद्धि होती है, नहीं तो सिद्धि नहीं। जो फिर समय है वही कबल। यदि शास्त्र विधि को हम लोग छोड़ देते हैं, न सिद्धि स्वभाव न थी जो शास्त्र विधि में सिद्ध वर्तती काम का न सिद्धि स्वभाव न थी, उसको कभी सिद्धि ला नहीं। न सुखांग न परांग थी, और सुख तो होता ही नहीं है, परागति का बात ही छोड़ दिया। तो शास्त्र में बताया है, निर्देश दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया है कि हरे नाम केवलम, बड़ा सरल उपाय है। ये आप लोग से निवेदन है कि इसको ग्रहण कीजिए और उसको जपा कीजिए, जीवन आपको सफल हो। थैंक यू वेरी मच। काली भक्त माने पटाखा भक्त नीचे, भक्त तत्व किसी ना गणम देही रूपम देही रूपवती भाज्यांग देही जसो देही ऐसा सब देही, और हम खूब मजा कर। কালী কালী পুজো তাদের জন্যই করা হয়েছে যারা পাঁটা খাবে। এমনি বৃথা মাংস কসাইখানার মাংস কে কে একবারে নরকে যাবে, সেই জন্য কালী পুজোর ব্যবস্থা করা হয়েছে যে মাসে একবার হয় অমাবস্যা, অমাবস্যাতে কালী পুজো করলে আর যাই হোক মায়ের প্রসাদ খাও। তো মাসে একবারই পাঁটা খাবার সুবিধা, আর রোজ নয়, রোজ নয় যে ওই দোকানে তো একটা কালী রেখে দিয়েছে, এটা তো শাস্ত্রবিধি। শাস্ত্রবিধি হচ্ছে কালী পুজো করে খাও, এটা মানে রেস্ট্রিক্ট কর, এটা যে খুব একবার রাস্তা করে দিয়েছে। আজকাল যেটা চলছে সব জায়গাতে মুসলমানের যে কোরবানি, সেটা ওই বকরির সময় মসজিদে করে, এটা জিহিংসা একেবারে নিষেধ শাস্ত্র। সব জায়গায় খ্রিস্টানরাও টেন কমান্ডমেন্টস ভেতর আছে, যাও সাল না কি মানছে কি শুনছে যা তা শাস্ত্র। সেই জন্য বলছে যশাস্ত্র বিধি মুসৃজ্য বর্ততে কাম কাম না সিদ্ধি সবাতে না সুখম না পরাম। যারা শাস্ত্রবিধি ছেড়ে দিয়ে যা তা করে তারা সুখ তো কোনোদিন পাবে না, সিদ্ধিও পাবে না, আর মুক্তির তো কোনো কথা। শাস্ত্রেতে লোকে বলছে, শাস্ত্রেতে বলেছে লোকে ভবয়া আমি সমুদ্রসী বা নিত্যাস্ত জন্তু। জন্তু মাত্রই তিনটে জিনিসে খুব আকর্ষণ আছে, কি না ভবয়া স্ত্রী সংসর্গ করা, আর আমিষ, আমিষ মানে মাংস মৎস্যাদি ভোজন করে আমিষ, ভবয়া আমিষ আর মদ্য সেবা লিকার ড্রিঙ্কিং লিকার, এটা একটা সাধারণ আকর্ষণ আছে। এটা আবার শাস্ত্রেতে নির্দেশ করছে কেন, না নির্দেশ এই জন্য করছে আকর্ষণটাকে ক্রমশ ক্রমশ কমিয়ে কমিয়ে ওটাকে নীল করে দেবে, এই জন্য শাস্ত্রেতে বিবাহ করতে বলছে যে স্ত্রী পুরুষের সঙ্গ হতে আছে, বিবাহ করার না করা আছে। ওটা বিবাহ করতে বলছে কেন, না ওটাকে রেস্ট্রিক্ট করছে যে একটা স্ত্রী একটা পুরুষের মধ্যে থাক, তা নাহলে ব্যবিচার হলে তো আর কিছু থাকলাম সব নষ্ট হয়ে যাবে, ওটাকে রেস্ট্রেন করছে। যে পাঁটা তো এমনি বাজারে কিনতেই পাওয়া যায়, আবার কালী পুজো করে বলবার কি, ওই রেস্ট্রিক করছে যে অমাবস্যার দিনে কালী পুজো হবে, তার মানে রেস্ট্রিক হয়ে গেল মাসে একবার। ওই ইচ্ছে করল বাজারেতে কসাইখানার মাংস কিনে নিয়ে এলো, মহাপাপ। রেস্ট্রিক করতে 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 কোনোদিন ওটা শূন্য হয়ে যায়। আসল উদ্দেশ্যটা যে সেগুলো ছাড়তে আসবে, কিন্তু এতে ছাড়বে না, ওই আস্তে আস্তে ছাড়বে, এই জন্যে শাস্ত্রের নমার কোশ্চেন।
বলুন।
তো গৌরী মঠের কথা এখানে আর নাকি দরকার। তো ওই আপনার ওই সব বুদ্ধি দিয়ে ভগবানের কথা বোঝা যায়। শোনো, এই ভগবান কৃষ্ণ ওই জন্য জন্ম কর্ম দিব্য, আপনি যে জন্ম টন্ম বুঝে রেখেছেন বাবা মা জন্ম ও জন্ম নয়, এই জন্য বলছে জন্ম কর্ম দিব্য যে জানা। শোনুন শোনো, ভগবানের জন্মটা ওইরকম না, আপনি যেরকম বলছে বাবার থেকে জন্ম হলো মায়ের থেকে জন্ম হলো তা নয়, এই জন্য বলছে জন্ম কর্মম সমীর দিব্যম, দিব্যম বলবার কারণ ইউটিউব দেশে ওটা লৌকিক নয়, আপনি তো লৌকিক কথা বলছেন। হ্যাঁ, ওই তো বাবা মার জন্ম, পিসিমার জন্ম, মায়ের জন্ম, এইসব হচ্ছে লৌকিক। হ্যাঁ, তো সেইটা সেই জন্য বলছে যেটাকে জানতে হবে ভালো করে, জন্ম কর্ম সমীর দিব্যম যু জানাতি তত্ত্ব, আমি যে বুদ্ধি নিয়ে বুঝে রেখেছি জন্মকর্ম ওই সব বুদ্ধিতে চলবে, দিব্যম এবং তত্ত্বত জ্ঞান। এবং ভগবান নিজে বলছে যে মনীষাণাম সহস্রেষু কশ্চিৎ যদি সিদ্ধায় যততাম বিসিদ্ধানাম কশ্চিৎ ব্যক্তিমাম তত্ত্বত, তত্ত্ব তো বুঝতে হবে, আর সে তত্ত্ব তো বোঝাটা সাধারণ না, বলছে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কেউ সিদ্ধি লাভ করে আর যতটা আমাকে সিদ্ধ আনাম, এই সিদ্ধিলাভ যারা করি তাদের মধ্যে কেউ জানে তত্ত্ব। ও আপনি বুঝে রেখেছেন যে মায়ের পেট থেকে জানছিল কৃষ্ণ রাম জন্মেছে রাম, ওই রাম ন সেটা বুঝতে হবে, এটা তাত্ত্বিক বুঝতে হবে, এবং সে তাত্ত্বিক বুঝবার রাস্তাটা ভগবান বলে দিয়েছেন, ভক্তা মাম অভিজানাতি যাবান যচ্ছামি তত্ত্ব, ওই তত্ত্ব ভগবানকে তত্ত্ব তো বুঝতে হবে, যা আমরা বুঝে রেখেছি ওইরকম বুঝে রাখবো, এবং তত্ত্ব বোঝবার জন্যে যে তত্ত্ব দর্শী না ভগবান বলেছেন, তদ্বৃদ্ধি প্রণিপাতে না পরিপুষ্ণে না সেবয়া উপদক্ষান্তি তদ জ্ঞানম, জ্ঞানী ন তত্ত্ব দর্শী, এই তত্ত্ব কতটা আগে বুঝতে হবে, ওইরকম নিজের মন ভাড়া বুঝলে হবে, এবং সেটা জানতে হবে তদ্বৃদ্ধি, সেটা জানো কি করে প্রণিপাতে না, আগে নিজের যে বুদ্ধাবুদ্ধি আছে সেটাকে প্রণিপাত করতে হবে, প্রকৃষ্ট রূপে নিপাত করে দিতে হবে, এটা হচ্ছে আসল কন্ডিশন, যে আমি খুব জেনে রেখেছি বুঝে রেখেছি বাস ঠিক হয়ে গেল না, তদ্বৃদ্ধি প্রণিপাতে প্রকৃষ্ট রূপে নিপাত করে দেবে, প্রণিপাতে পরিপ্রশ্নে সেই ভয়া সেবা করতে হবে, পরিপ্রশ্ন করতে হবে, প্রণিপাত করতে হবে, এইরকম ভাবে করলে যে জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী যে তত্ত্ব জানে সে বুঝে উঠবে, নিজের মন ভাড়া বুঝলে হবে, যেমন শাস্ত্রের নির্দেশ আছে সেরকম। ওই জন্য বলছি যে তত্ত্বদর্শীর কাছে যেতে হবে ওইরকম ভাবে বুঝলে হবে, ওইরকম বুঝলে হবে। এটা স্পেকুলেশনের জিনিস না, অথাপিতি দেব পদাম বিজুদ্ধম প্রসাদ লীশান গৃহীত ওই জানাতি তত্ত্বম, প্রসাদ লীশ গৃহীত যারা ভগবানের সামান্য একটু প্রসাদ পেয়েছে তারা তত্ত্ব তো বুঝতে পারে, জন্ম কর্মঞ্চ দিব্যম যু জানাতি তত্ত্ব, ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান হলে শুধু মুক্ত হয়ে গেল,